ओम शांति। महायाना बुद्धिज्म में एक बहुत बड़े विचारक हुए थे और उनका नाम था नागार्जुन। उस नागार्जुन के पास एक दिन एक व्यक्ति आता है और उनसे कहता है कि मुझे परमात्मा का अनुभव होने लगा है, जब ध्यान करने बैठता हूं तो परमात्मा की छवि सामने दिखाई देने लगती है। स्मित हास्य परमात्मा का सामने दिखाई देने लगता है। तो नागार्जुन तो अपने किस्म के व्यक्ति थे, उन्होंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर अब तुमको एक अभ्यास करना है 3 दिन तक। जो सामने गुफा है छोटी सी, उसमें बैठकर ये अभ्यास करो कि मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं। तो कहता है इससे क्या होगा? बोला कुछ नहीं होगा, करो तो सही। तो वो उसको 3 दिन के लिए ये अभ्यास देते हैं समान। तो वो व्यक्ति, वो भी बहुत सिद्धि होता है, 3 दिन तक लग जाता है इसी समान का अभ्यास करने करते, भूख प्यास सब कुछ छोड़ देता है और 3 दिन तक वो यही अभ्यास करते रहता है। मुरलियों में कभी कभी ये वाक्य आता है। तो 3 दिन के बाद उस गुफा से भैंस की आवाजें आने लगती है। तो बाकी शिष्य भी देखते हैं क्या हो रहा है। 3 दिन के बाद नागार्जुन उस व्यक्ति को कहते हैं कि बाहर आओ। तो कहता आना तो चाहता हूं पर कैसे आओ मेरे सिंह। वो कहता है आओ बाहर। वो बोलता आना तो चाहता हूं पर आऊं कैसे, दरवाजा बहुत छोटा है, गुफा बहुत छोटी है, मैं अंदर बाहर नहीं निकल सकता। तो उसको बहुत समझाते हैं परंतु नहीं समझता है, क्योंकि दिन रात वो एक ही अभ्यास करते रहता है जो उसको अभ्यास दिया हुआ होता है। और वो 3 दिन के बाद जैसे कि उसका संपूर्ण स्वरूप बन जाता है, रंभने की आवाज भैंस के अंदर से आने लगती है, उसको फिर घसीटकर खींचकर बाहर निकाला जाता है। फिर भी वो चिल्लाते रहता है कि मैं नहीं निकल पाऊंगा क्योंकि दरवाजा छोटा है और मेरे सिंह बीच में आ रहे हैं, और उसको बाहर निकाला जाता है। और उसको नागार्जुन कहते हैं कि तुम जो कह रहे थे मुझे ये अनुभव होने लगे हैं और ये जो जो कुछ हो रहा है ये केवल और केवल आत्म सम्मोहन मात्र है। 3 दिन का अभ्यास किया, उस 3 दिन के अभ्यास में ही तुम उसके क्या हो गए, स्वरूप बन गए। तो ये अनुभव जो है ये किस लिए हुआ, केवल एक छोटे से अभ्यास से। और दूसरी बात, जो तुम अब स्वरूप बन गए हो वो बार बार किसी चीज के दोहराने से, परंतु वास्तव में उसका वो वास्तविक स्वरूप नहीं है। ये जो स्वरूप बना है वो कुछ अल्पकाल के अभ्यास के कारण, इसी को बाबा कहते हैं पुराना संस्कार। वो तुम्हारा अनादि संस्कार नहीं है, वो तुम्हारा मध्यकाल का संस्कार है, तुम्हारा बीच का संस्कार है, जो तुमने बार 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 अभ्यास किया, जो कि झूठ है परंतु फिर भी सत्य भासता है, फिर भी तुम उसके स्वरूप बन चुके हैं। जैसे उस कहानी में वो व्यक्ति भैंस बन चुका था जबकि वो था नहीं, परंतु आत्म सम्मोहन हो गया सेल्फ हिप्नोसिस रेपिटेशन की वजह से, बार बार पुनरुक्ति की वजह से। तो कल की मुरली में बाबा ने कहा बच्चों को 3 बातें परेशान करती है, पूरी मुरली फिर से हम तीन 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 और तीन बातों पर डिस्कस करेंगे। बच्चों को तीन बातें परेशान करती है, इसी मुरली की रमेश भाई साहब ने मुरली रिवीजन कराई थी 2007 में। ये पहली मुरली है दादी के अव्यक्त होने के बाद, 25 अगस्त 2007 के बाद की फर्स्ट अव्यक्त वाणी है 31 अक्टूबर 2007, जिसमें रमेश भाई ने ये मुरली रिवाइज कराई थी, जिसमें कहा था कि विदेशियों को तीन चीजें बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें विदेशी भी थे, एक तो आइसक्रीम, दूसरा वेफर्स और तीसरा क्या तीसरा पिज्जा। ऐसी उन्होंने तीन बातें बताई। इस मुरली में बाबा कह रहे हैं कि तीन बातें तुम बच्चों को बहुत परेशान करती है, कौन कौन सी? चंचल मन, भटकती बुद्धि और पुराने संस्कार। जिन संस्कारों को तुम मेरा कह रहे हो, ये मेरा कहना अर्थात ही तुम उन पर अपना अधिकार समझ रहे हो। रमेश भाई ने और एक बात उस मुरली में कही है कि मैं जब कानपुर गया था, वहां पर गंगे दादी थी, तो गंगे दादी ने एक बार विद्या बहन से कहा कि मेरी को बुलाना। तो उनको लगा मेरी मतलब होगी शायद विदेश में मेरी नाम होता है ना किसी क्रिश्चियन स्त्री का, तो मेरी को बुलाना, तो वो इंतजार कर रहे थे मेरी कहाँ आएगी, तो मेरी तो आई नहीं। तो उन्होंने कहा मेरी का क्या अर्थ है, मेरी का एक दूसरा ही अर्थ है उस भाषा में, मेरी अर्थात वहां पर दासी को मेरी कहते हैं, वो मेरी आई क्यों नहीं, मेरी अर्थात नौकरानी। तो मेरी कहना अर्थात दासी बन जाना, ये करता है। तो पुराने संस्कार को तुमने क्या कर दिया है, अपना माना है। तुम क्या कहते हो, मेरे संस्कार है। तो मेरा 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 कहने के कारण, बार बार रिपीटेशन के कारण, आत्म सम्मोहन होने के कारण वो अपना हो गया है, और उसमें हम स्थित भी हो गए और उसके हम स्वरूप भी बन गए हैं। तो तीन चीजें बच्चों को बहुत परेशान करती है, एक चंचल मन, मन चंचल है, ठहरता नहीं है, अभी अभी इधर अभी अभी उधर, अभी अभी यहां अभी अभी वहां, भटकती बुद्धि। उस मुरली में भाई साहब ने कहा है कि कुछ माताएं बाबा मेरे पास आई थी और कह रही थी कि योग में बैठते हैं तो बुद्धि भटकते रहती है, तो शायद बाबा ने उनकी ये बात सुन ली और ये बात कही मुरली में, चंचल मन, भटकती हुई बुद्धि और पुराने संस्कार। ट्रीटमेंट क्या है इसका, पुराने संस्कार का, पुराने संस्कार की और तीन बातें बताई। ये पुराने जीवन के संस्कार है अर्थात पास्ट लाइफ के संस्कार है एक, ये शूद्र जीवन के संस्कार है दो, और तीसरा ये ब्राह्मण जीवन के संस्कार नहीं है। फिर तीन बातें, ये शूद्र जीवन के संस्कार है, शूद्र के संस्कार है हमारे संस्कार नहीं है, ये पास्ट लाइफ के संस्कार है इस लाइफ के नहीं है, और ये ब्राह्मण जीवन के संस्कार नहीं है। ट्रीटमेंट क्या है इसकी, ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट मुरली में कुछ बताया है, जब तुम ये भूल जाते हो कि बाप कंबाइंड है, कंबाइंडपन का अनुभव करो तो ये तुमको सहयोग देगा, तो वो फिर पुराने संस्कार ही मर्ज नहीं होंगे। ये उसकी ट्रीटमेंट है, कंबाइंड स्वरूप को इमर्ज करना। तो अभी मुरली की शुरुआत करते हैं। आज बाप दादा क्या देख रहे हैं, सामने बैठे बच्चों को देख रहे हैं, सामने बैठे बच्चों को देख रहे हैं, पीछे बैठे बच्चों को देख रहे हैं, दाएं वालों को देख रहे हैं, बाएं वालों को देख रहे हैं, कौन से बच्चों को देख रहे हैं, चारों ओर के। कैसा वाक्य है, चारों ओर दसों दिशाएं 14 भुवन। गायन है चार ओर है 10 दिशाएं है, तो बाबा चारों ओर के बच्चों को देख रहे हैं, जो सामने बैठे हैं उनको नहीं, जो आने वाले शायद उनको भी, सबको देख रहे हैं। वो स्टेज देखो कैसी है उसकी, जिस स्टेज पर बैठकर वो देख रहा है क्या कह रहा है? मुरली का प्रथम महावाक्य आज बाप दादा चारों ओर के बेहद की दृष्टि है, सारे भूमंडल पर दृष्टि घूम रही है, वो भी जो अब तक बने नहीं है, वो भी जो अब तक आए नहीं है, वो भी जो अब आने वाले हैं, जो भावी ब्राह्मण है, जो भावी देवता है, होवनहार देवता है, उन सभी बच्चों को बाबा देख रहे हैं। तो आज बाप दादा किसको देख रहे हैं? चारों ओर के। कौन से बच्चे? श्रेष्ठ समानधारी बच्चों को देख रहे हैं। फिर से मुरली को हम तीन तीन बातों में लेंगे, तीन समान। पहला पूर्वज और पूज्य आत्माएं। तुम सब कौन हो? एक एक पूर्वज है और एक एक पूज्य है। यह है तुम्हारा अनादि संस्कार, इसको इमर्ज करो। दूसरा कल्प वृक्ष जो है, उसकी जो जड़े है, उसमें तुम कौन हो? आधार मूर्त हो।
आधार मूर्त।
कल्प वृक्ष की जड़ों में तुम आधार मूर्त हो, अर्थात इस संसार, ये जो वृक्ष है, ये जो झाड़ है, इसके जो भी पत्ते हैं, इसमें जो भी फल है, जो भी शाखाएं हैं, जो भी डाल डालियां है, जो भी तना है, उन सब का पोषण, इन सब का पालन करने वाले तुम हो, क्योंकि तुम जड़े हो। इस वृक्ष के जड़ में तुम आधार मूर्त हो। ये दूसरा समान। और समान तो आगे है ही, पर शुरुआत में ये तीन समान है। तीसरा, तुम पूर्वज में भी पहली रचना हो। क्या हो? फर्स्ट क्रिएशन।
डायरेक्ट
तुम पहली रचना हो, भगवान की पहली रचना। उधर शास्त्रों में गायन है जो ब्रह्मा की पहली रचना थी मनु, उधर गायन है पहली रचना थी एडम और ईव, उनका कितना गायन है। फर्स्ट क्रिएशन तुम हो। तो आज बाप दादा विश्व के चारों ओर के श्रेष्ठ समानधारी बच्चों को देख रहे हैं, और उसमें भी और तीन, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, और चाहे माताएं हो, सबकी विशेषता अलग अलग है। चाहे बुजुर्ग, चाहे माता, चाहे बच्चा, सभी की विशेषताएं है, और सबकी विशेषताएं अलग अलग है। और समान है, तुम पूर्वज हो, तुम पूज्य हो। समान है, तुम पहली रचना हो, तुम इस वृक्ष के जड़ में आधार मूर्त हो। तीन और तीन। अभी अगले तीन, बच्चे, माताएं और प्रवृत्ति वाले। बच्चे भी क्या कहते हैं यहां पर? वो साइंस दान, उदाहरण दिया साइंस का, साइंस दान चंद्रमा तक पहुंच गया है, प्रकृति जीत बन गया है, परंतु छोटी सी आत्मा, ज्योतिर्मयी आत्मा, उसका उन्हें कोई ज्ञान नहीं। और यहाँ एक छोटा सा बच्चा भी फलक से कहता है, क्या कहता है? मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योतिबिंदु आत्मा हूँ। अनुभव हो या ना हो दूसरी बात है, परंतु कहते अगर रहोगे तो वो भी हो जाएगा। जैसे कहानी में बताया नागार्जुन की, कि मैं भैंस हूं और मैं भैंस हूं, जो तुम्हारा, तुम तो उस जाति के ही नहीं हो, मनुष्य हो, मनुष्य होकर जानवरों का सम्मान लिया तो भी क्या कहा कि मेरी सिंह है, मैं निकल नहीं सकता। अगर ये स्थिति है तो इसका क्या होगा? जो तुम ऑलरेडी हो। जब स्वामी विवेकानंद फर्स्ट टाइम अमेरिका गए थे तो उनको लोगों ने कहा, अच्छा तो तुम आए हो अब हमको हिप्नोटाइज करने। उन्होंने कहा, तुम तो ऑलरेडी हिप्नोटाइज्ड हो, यू आर ऑलरेडी हिप्नोटाइज्ड दैट यू आर बॉडीज, आई हैव कम टू डी हिप्नोटाइज यू दैट यू आर सोल्स। तुम पहले से ही हिप्नोटाइज हो चुके हो कि तुम देह हो, मैं तुम्हें डी हिप्नोटाइज करने आया हूं, सम्मोहन से मुक्त करने आया हूं कि तुम देह नहीं। नच भाति भूत संगम तद ब्रह्म निष्कलम। नच भाति भूत संगम, ये जो भूत का संग है, ये जो देह और हड्डी और जर्जर हुआ ये जो देह है तुम्हारा, कंकाल जो है, ये तुम नहीं हो। तद ब्रह्म निष्कलम अहम्, तुम वो हो, ये करने मैं आया हूं। तो बच्चा भी क्या कहता है यहां पर, और कैसे कहता है, फलक से कहता है, और क्या कहता है, मैं आत्मा हूं, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। वहां बड़े बड़े महात्माएं नहीं कर सके, जान पाए, चांद पर जा रहे, प्रकृति जीत बन रहे, परंतु छोटी सी आत्मा को नहीं जाना। एक बच्चा, दूसरा माता, वो महात्माएं करते हैं, कहते हैं परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है। माताएं क्या कहती है, हमने परमात्मा को पा लिया, ये माताएं कहती है। माताएं को, ये माताओं को ये नशा है कि वो कहती हमने पा लिया, और वो ढूंढ रहे नेति नेति, इसमें है वो है, ये है या नहीं है, है या नहीं है, यही उहापोह उधर चालू है, परंतु जाना नहीं किसी ने अभी तक। दूसरा माता, तीसरा प्रवृत्ति वाले, वो कहते हैं आग और कपास, बाबा कपास को कपूस कहते हैं, उनका एक साथ रहना बहुत मुश्किल है, परंतु तुम क्या कहते हो, प्रवृत्ति वाले क्या कहते हैं, पवित्रता हमारा स्वधर्म है, बीच में बाबा है, हमारे लिए पवित्रता अति सहज है, पर धर्म में मुश्किल है, स्वधर्म सहज है, गीता का श्लोक है 18वां अध्याय 47वां श्लोक, उसमें इसका वर्णन है कि स्वधर्म जो है, चाहे कितना भी कठिन हो या कितना भी अच्छे से ना करो, फिर भी वही श्रेष्ठ है, परंतु पर धर्म में खतरा है। स्वधर्म नहीं, ये श्लोक इसका नहीं है, थोड़ा सा अलग है वो श्लोक, भयावह है, बर्बर है, उसमें भय है, पर धर्म में भय है, स्वधर्म में श्रेय है, स्वधर्म में सुख है, और स्वधर्म चाहे निकृष्ट भी क्यों ना हो संसार की तुलना में, फिर भी पर धर्म से वो श्रेष्ठ ही है। तो इस श्लोक का रेफरेंस है यहां पर, तुम्हारा स्वधर्म पवित्रता है, तुम कहते हो कि हम रह सकते हैं, ये हमारा सहज है, उनके लिए असंभव है, जो उनके लिए असंभव है वो तुम्हारे लिए संभव है, क्योंकि बीच में बाप है, बीच में सर्वशक्तिवान बाप है। तो फिर से ये तीन लोग, पहले तीन समान दिए, फिर विशेषता बताई, चाहे बच्चे चाहे बुजुर्ग चाहे माता, वो तीनों की विशेषता अलग अलग, ये दूसरे तीन, तीसरे तीन, ये बच्चा कहता है मैं आत्मा हूं, माताएं कहती है हमने परमात्मा को पा लिया, और गृहस्थी कहते हैं पवित्रता हमारे लिए सहज है। अभी तीन गीत बाबा ने गाए मुरली में, हमने, बाबा ने नहीं गाए, तीन गीत बताए, गाते तो तुम हो। पहला गीत, ये तो कभी सुना नहीं, पहला गीत, चाहे स्वामी हो सेठ हो परंतु अल्प को नहीं जाना, कौन सा गीत है ये, ये ब्रह्मा बाबा का गीत होगा शायद, कराची का बहुत पुराना गीत है। तो बाबा ने कहा ये तुम्हारा गीत है, तुम परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे बन गए हो, इसलिए क्या बन गए, ये तुम गीत गाते हो इसलिए क्या, इसके लिए तुम बच गए, और बच गए अर्थात माया से, विघ्न से, समस्याओं से बच गए। ये पहला गीत, ये पहले गीत का थोड़ा सा वर्णन बाबा ने किया है, पहला गीत। बीच में थोड़ी दो शक्तियां आ गई, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। दूसरा गीत, पाना था सो पा लिया, तुम फलक से कहते हो, तुम नशे से कहते हो, तुम फकूर से कहते हो, और जब फकूर से कहते हो, जहां फकूर है वहां पर फिकर नहीं हो सकती, क्योंकि फिकर बाप को दे दी, क्योंकि तुम्हारा बाप स्वयं बेफिक्र है, और इसलिए जो भी बोझ हो वो क्या कर दो,
बाप को समर्पित,
बाप को दे दो। बाप बैठा हुआ है क्योंकि बाप सागर है और सागर में सब कुछ समाया जा सकता है, इसके लिए दे दो, पकड़ के नहीं रखो। बाबा को देते क्यों नहीं, वो मांग रहा है, लिखा है यूज मी। संसार में एक किसी ने वीडियो भेजा था, उसमें एक एक गार्डन में यूज मी नाम, यूज मी होता है ना डस्टबिन, वो जो डस्टबिन था वो एक जानवर था, डायनो कंगारू, तो माता है उसकी पूजा कर रही थी। माता है उसकी भी पूजा चालू कर दी थी जबकि वो डस्टबिन था। तो यहां भगवान सामने खड़ा है, लिखा है यूज मी, जो भी होगा सब डाल दो, मैं सागर हूं सब संभालूंगा। तो डालने के बजाय हम भी तो पूजा नहीं कर रहे हैं खाली। वो कहता है यूज मी, मेरा उपयोग करो, जो भी बोझ होगा सब डालो। ये तुम्हारा दूसरा गीत, पाना था सो पा लिया, ये नशे से कहते हो, फकूर से कहते हो, फकूर से गाते हो, कुछ भी अप्राप्त अलभ्य वस्तु नहीं संसार में तुम्हारे लिए। तीसरा गीत जो है, हाँ इसमें बाबा को प्रॉब्लम है, ये जो तुम्हारा तीसरा गीत है बाबा नहीं चाहता तुम ये गीत गाओ। कौन सा गीत है वो? क्या होगा कैसे होगा, क्या करे क्या होगा कैसे होगा, ये गीत है, ये बाबा नहीं चाहते। इसका ट्रीटमेंट तीन गीत और तीनों का गीतों का थोड़ा थोड़ा विस्तार किया है, इसके बारे में क्या कहा, ये जो तुम करते हो उसका क्या, वो हो गया, जब बाप बेफिक्र है वो पाना था फाना, तुम्हें नशा रहना चाहिए, फिक्र बेफिक्र हो जाओ, बाप को सारा बोझ दे दो, बाप सागर है वो उसमें समा देगा, वो गीत कंबाइंड स्वरूप हो गया, कंबाइंड स्वरूप आगे है साक्षी, ये है इसकी ट्रीटमेंट, क्या करे कैसे करे, बहुत सुंदर
किसी ने तो बता दिया।
हाँ क्या करे कैसे करे इसकी ट्रीटमेंट है, जो भी होता है उसे साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट होकर देखो तो मजा आएगा। अपसेट नहीं होंगे अगर सीट पे सेट रहोगे तो, बाबा बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता है जो भी संसार की घटनाएं हैं, क्यों, क्योंकि वो परम साक्षी में है, परम साक्षी की अवस्था में, परम साक्षी भाव में है, परम साक्षी की सीट में बैठा हुआ है, कहीं पर कुछ भी इंटरफियर नहीं करता है। हमको लग रहा है ये गलत वो गलत, ये इसने ऐसा किया उसने वैसा किया, यहां ये करना चाहिए वहां, यहां चुप बैठे तो कैसे होगा, पर वो तो देखो कुछ भी नहीं कहता है,
खेल नजर आएगा,
उसको खेल, बाबा ने कहा तुमको मजा आएगा और खेल नजर आएगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तो तसफल चाखा, हर एक को वही मिल रहा है जो उसने किया है, इसके लिए कर्म प्रधान उसने कर रखा है, ऑटोमेटिक मशीनरी बना रखी है, उसको थोड़ी ना आके चालू करना पड़ता है बंद करना पड़ता है, उसको कुछ भी नहीं करना पड़ता है। अगर वो यही करते बैठे, इसने पाप किया चलो इसको मैं सजा देता हूं, इसने पुण्य किया चलो मैं इसको अब थोड़ा क्या करता हूं एक्स्ट्रा मदद करता हूं, वो ये सब नहीं करता है, ऑटोमेटिक मशीनरी बना के रखी है। जा जाके हर बार कोई ट्रैफिक कंट्रोल बजाता है, अपने आप बजता है गीत, क्योंकि सेट करके रखा है। वैसे ही कर्म की फिलॉसफी और कर्म के सिद्धांत भी उसने सेट कर रखे हैं। संसार में जो पाप करेगा उसको फल मिलेगा, जो पुण्य करेगा उसको फल मिलेगा, वो कुछ नहीं करता है। परम साक्षी भाव, डिटैच्ड ऑब्जर्वर, विटनेस, जैसे मैं साक्षी हूं, जैसे मैं साक्षी होकर इस संसार के इस ड्रामा के खेल को देखता हूं, वैसे तुम भी साक्षी होकर इस ड्रामा के इस संसार के इस जगत के इस लीला को देखो। भक्ति में उत्तर दिया हुआ है, ये संसार क्यों बनाया भगवान ने, क्यों उत्तर, क्या उत्तर है बिंदुबेन, क्या उत्तर है, संसार क्यों बनाया है भगवान ने, इट इज फॉर एंटरटेनमेंट, लीला है ये, लीला है। एक चित्र किसी ने कितना सुंदर भेजा था, परमधाम, परमधाम से झूला लटक रहा है, नीचे धरती है, परमधाम है, झूला लटक रहा है और उसमें एक छोटी सी बच्ची बैठी है, नीचे धरती है, लिखा है लेट्स प्ले ऑन अर्थ, चलो धरती पर खेलते हैं। तो जैसे क्या करे कैसे होगा, क्यों, कब होगा, पता नहीं क्या होगा। तो बाबा ने क्या कहा उत्तर में, साक्षी होकर देखो तो मजा आएगा, साक्षी होकर देखो तो खेल लगेगा, साक्षी होकर देखो तो अपसेट नहीं होंगे। तीन चीजें फिर से, मजा, खेल और अपसेट नहीं होंगे। नहीं तो दुखी होना पड़ेगा, बार बार अपसेट होना पड़ेगा, बार बार निराशा, बार बार उदासी, बार बार अवसाद, बार बार रूठना। सीट पर सेट रहो, पर कौन सी सीट है ये, साक्षी। तीन गीत और उनके तीन एक्सप्लेनेशन। अभी दो शक्तियों का वर्णन किया है, यहां दो ही शक्तियां हैं, एक तो साइलेंस, दूसरा परिवर्तन। पर इन साइलेंस और परिवर्तन की शक्ति से फिर तीन चीजें हो जाएगी। वो तीन चीजें कौन सी, श्रद्धाविन, निगेटिव पॉजिटिव, कारण निवारण, समस्या का हल समाधान। समस्या समाधान कारण निवारण निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तुम कोर्स कराते हो ना, ऐसा बाबा ने पूछा है। तो परिवर्तन शक्ति, साइलेंस की शक्ति द्वारा परिवर्तन शक्ति को प्रयोग का प्रयोग करो। यहां फिर से तीन बातें अब है, तीन बातें तुमको परेशान करती है जिससे हमने मुरली की शुरुआत की थी, चंचल मन, भटकती बुद्धि और पुराने संस्कार। पुराने संस्कार में और तीन चीजें, ये तुम्हारे ये शूद्र के संस्कार है, पुराने जीवन के संस्कार है, इस जीवन के संस्कार नहीं है। तुम्हारा नवजन्म हुआ है,
मेरा नहीं,
ये तुम्हारे नहीं है, ये मध्य के है। और मध्य के है तो महान क्यों बन जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे बाप को कंबाइंड नहीं रखते हो, इसलिए ये मध्य के जो संस्कार है, ये जो बीच के जो संस्कार है, जो कि तुमने जिसको अपना माना है, वो महान बन जाते हैं। तो ये शूद्र के है एक, ये पास्ट लाइफ के है, और तीसरा ये ब्राह्मण जीवन के नहीं है। ब्राह्मणों को द्विज कहा है शास्त्रों ने, द्विज अर्थात दूसरा जन्म जहां हुआ है। यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं, उस संस्कार में उपनयन संस्कार, नया जन्म होता है। दिखाया है चाणक्य में, जब धननंद के द्वारा चाणक्य का अपमान होता है, जब वह जाता है और कहता है उसको कि कुछ करो, मगध ही एकमात्र ऐसा जनपद है जो कि भारत की रक्षा कर सकता है, और वहां पर अलक्षेंद्र भारत की सीमाओं को क्रॉस करते हुए, पार करते हुए आ रहा है भारत की ओर बढ़ते हुए, तो उसको शिखा पकड़कर उसको फेंक देता है, बाहर हटवा देता है, प्रतिहारियों से कहता है कि इसको बाहर निकालो। और जब चाणक्य बाहर आता है, प्रतिज्ञा करता है और जाता है, और वो छोटा चंद्रगुप्त उसे वहां मिलता है, पहले भी मिला हुआ होता है, परंतु वहां उसको वो कहता है, चंद्रगुप्त आज तुम्हारा नया जन्म हुआ है, आज से तुम्हारा नया जन्म होगा। और उसका वो उपनयन संस्कार वहां करता है, यज्ञोपवीत संस्कार, नव जन्म। अब तुम वो नहीं हो, अब तुम्हारा जन्म मगध के लिए हुआ है, तुम्हारा जन्म ये बकरियां चराने के लिए नहीं हुआ है, तुम इसके लिए नहीं हो। तुम भेड़ बकरियों को दिशा नहीं दिखाओगे, तुम मगध को दिशा दिखाओगे। नया जन्म, नया जन्म अर्थात पुरानी स्मृतियां समाप्त, नया जन्म अर्थात शूद्र संस्कार समाप्त, नया जन्म अर्थात पास्ट लाइफ था वो लाइफ अब नहीं रही, वो भाषा, वो बोल, वो संस्कार, वो संकल्प, वो समाप्त। ये तीन बातें। और फिर एक ड्रिल कराई, दृष्टि देते हुए देखा बाबा को बीच में कैसे दृष्टि दे रहे थे। तो क्या करना है तुम्हें, एक अभ्यास, बीच का थोड़ा सा कट कर दिया वहां पर, और भी थोड़ी सी बातें हैं। तुम मैं पूज्य आत्मा हूं, एक जगह मैं विजयी रतन हूं भी बोला है, और एक जगह ये भी कहा है कि मैं देने वाली हूं, दान करने वाली पूज्य आत्मा, वो कट कर दिया। और सीधा कहां पर आए, अनुभव ही सर्वश्रेष्ठ अथॉरिटी है। इसके लिए तुम्हें एक अभ्यास करना है। कौन सा अभ्यास? कितना देर में? कभी भी करो, एक सेकंड में करो, कभी मिनट में करो, कामकाज करते हुए करो, बीच बीच में करो, परंतु अभ्यास करो। कौन सा अभ्यास करो? मैं फरिश्ता हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं अशरीरी हूं, है उसमें तो एक ही अभ्यास, मैं ब्राह्मण, मैं फरिश्ता। बीच बीच में अशरीरी हो जाओ, बीच बीच में शरीर से अटैच डिटैच हो जाओ, बीच बीच में शरीर से अलग हो जाओ, यही एकमात्र अभ्यास है। नहीं तो आत्मा तड़प तड़प के शरीर छोड़ेगी, क्योंकि देह में जिस आत्मा का जितना मोह, और जो देह को ही अपना स्वरूप समझ रखा है और देह के संबंधों को ही अपना समझ रखा है, वहां पीड़ा होगी शरीर छोड़ते समय। दर्द में आत्मा शरीर छोड़ेगी, और जो आत्मा जितना दर्द में, पीड़ा में, दुख में, वेदना के साथ शरीर छोड़ेगी, दूसरा जन्म में भी वही सारे संस्कार लेकर जाएगी, वहीं से दूसरा जीवन भी चालू होगा। इसलिए कैसे कौन शरीर को छोड़ रहा है? संसार के लिए मृत्यु दुखद घटना है, भयावह घटना है, पर यहां क्या है? सुखदायी घटना है, सबसे सुखद अवसर, सबसे अच्छी घटना है। यहां तो हम पुकार रहे हैं कि हम खुशी खुशी से इस देह को छोड़े। वो दिखाया था ना, किसका? आईकू या बोकाजो। वो कहता है मैं कैसे शरीर छोड़ू, मुझे कुछ नया बताओ, अपने शिष्यों से कहता है। तो वो शिष्य कहते हैं बेड पर, वो बोलते हैं नहीं नहीं मुझे कुछ अलग बताओ, कुछ नया बताओ कुछ। तो कोई कहते खड़े खड़े, तो हाँ ये अच्छा है खड़े खड़े। पर कोई कहता नहीं, इसके पहले एक दो लोगों ने ऐसा शरीर छोड़ा है, कोई कोई जेन मास्टर ने, इसको रिजेक्ट, दूसरा बताओ। तो कई सारे नए नए उपाय बताते, तो एक बताता है कि हाँ शीर्षासन में शरीर छोड़ो। हाँ कहता है ये बढ़िया है, ये एकदम अच्छा है। तो फटाफट शीर्षासन में हो जाता है और शरीर से बाहर, ऐसा खेल। तो वो होता है, फिर अब उसको निकाले कैसे, अर्थी में बिठाए कैसे, वो थोड़ा प्रश्न होता है। किस पोजीशन से उसको उठाए, नीचे से उठाए, ऊपर से उठाए? तो उसकी बहन बाजू में ही रहती है, वो तो उससे बड़ी योगी रहती है। तो उसको बुलाया जाता है, इसका क्या करे? तो वो कहता है, वो आती है, कहता है क्या हुआ, शरीर छोड़ दिया क्या? हाँ छोड़ दिया, मृत्यु हो गई। तो आके देखती है वो शीर्षासन में और श्वास बंद हो गई। वो कहती है बोकाजो तुम माज नहीं आओगे, बचपन से ऐसी शरारते करते आए, चलो उठो और सो जाओ, लेट जाओ। तो फटाफट वो उठता है, लेट जाता है और डेथ, और शरीर छोड़ देता है। हाँ तब फाइनल छोड़ देता है और वो आराम से चली जाती है। ये है डेथ। डेथ सेलिब्रेशन होना चाहिए, मृत्यु हो जाए तो बाजे बजने चाहिए। ये है वास्तविक मृत्यु, ऐसी होनी चाहिए शरीर छोड़ना। ये होगा कब? जब इस तरह से अभ्यास करते रहो कि मैं देह हूं ही नहीं, ये देह से तदात्म्य जो है यही सबसे बड़े दुख का कारण है। फ्रेडरिच नीट्शे ने अपनी एक जगह लिखा है कि द ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ सॉरो ऑफ ह्यूमैनिटी इज आइडेंटिफिकेशन। ये जो आइडेंटिफिकेशन है देह के साथ, तदात्म्य जो है, यही संपूर्ण मानवता का एकमात्र दुख का कारण है। जो अपने आप को देह ही समझते रहता है, रक्त का, मांस का गोला ही समझते रहता है। द ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ सॉरो ऑफ ह्यूमैनिटी इज आइडेंटिफिकेशन विद बॉडी। अपने आप को, ये वो लोग है, फ्रेडरिक नीट्शे पेसिमिस्ट है, अनिश्वरवादी, वो तो भगवान को ही नहीं मानता, परंतु ये उसको समझ में आ गया उसको भी कि देह के वजह से सब हो रहा है, दुख का कारण देह है। तो यहां बाबा ने एक अभ्यास बताया। कौन सा अभ्यास? देह से अलग होने का, अशरीरी होने का। कब होने का? कामकाज करते हो, बीच बीच में, जब बहुत बिजी हो, अति में अति का अभ्यास करो। एक मुरली थी ना, अति अर्थात जब अति व्यस्त हो तब अति, अंत का जो स्थिति है उसका अभ्यास करो। तो कर्म करते हुए भी बीच बीच में स्वयं को शरीर से अलग कर देना, डिटैच कर देना। मैं फरिश्ता हूं, मैं ब्राह्मण हूं, ये ब्राह्मण कहना ये भी बहुत ऊंची अवस्था है, क्योंकि उसमें फिर हम ये नहीं रहते जो अभी नॉर्मल स्मृति जो है, साधारण मनुष्य की, पुरुष हूं स्त्री हूं, पुरुषत्व और स्त्रीत्व इससे परे, ना तो पुरुष हूं ना तो स्त्री हूं, आत्मा तो निर्लिंग है। परंतु हाँ, एक संडे वाली मुरली में तो दूसरा कहा है, परमात्मा पुरुष है और आत्मा नारी है, वो दूसरी बात है। तो यहां पर मुरली पूरी होती है, फिर से इसको रिवाइज करेंगे और इसमें से कुछ होमवर्क निकालेंगे। मुरली की शुरुआत आज बाप दादा चारों ओर के श्रेष्ठ समानधारी बच्चों को देख रहे हैं। तीन समान दिए, पहला समान था मैं पूर्वज आत्मा हूं। तो प्रश्न, पहला प्रश्न, पूर्वज और पूज्य आत्माओं की निशानियां 10, पूर्वज और पूज्य आत्माओं की 10 निशानियां क्या है, या फिर यदि मैं पूर्वज हूं यदि मैं पूज्य हूं तो मैं मेरा कर्तव्य क्या है। पूर्वज अर्थात हम इस सृष्टि में सबसे पहले आए हैं, ये तो सब अभी भी आए हैं, ये बुद्ध, ये जीजस, ये मोहम्मद, गुरु नानक अभी अभी आए हैं संसार में, हमसे बहुत बाद में आए, हम उससे भी पहले इस धरती में है। एंसेस्टर्स, फोर फादर्स, प्रोजेनिटर्स ऑफ द वर्ल्ड, वी आर द एंसेस्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। बहुत हम, मैं पूर्वज आत्मा हूं। इसके लिए हमें क्या करना है, मेरे कर्तव्य क्या है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, मैं वृक्ष की जड़ों में आधार मूर्त आत्मा हूं, मैं इस कल्प वृक्ष का कि क्या हूं, जड़ हूं, तो मुझे क्या करना है। अगर जड़ ये सोचे कि मुझे बाहर निकलना है, देखो ये फल, देखो लोग कितनी तारीफ कर रहे फल की, इस पत्तों की कितनी तारीफ कर रहे, फूलों की कितनी तारीफ कर रहे, मेरी कोई भी तारीफ नहीं करता, मुझे कोई नाम मान नहीं मिलता है। अगर जड़ ये सोचे तो जड़ जैसे ही बाहर निकलेंगे उधर से लकड़हारा आएगा और जड़ को काट कर लेके जाएगा जलाने के लिए। इसके लिए गुप्त रहते हैं जड़े। तो यदि हम जड़े हैं तो मेरा कर्तव्य क्या है, या फिर वृक्ष में जड़ों का क्या काम है। आधार मूर्त हूं तो क्या काम है मेरा, ये दूसरा प्रश्न। तीसरा, मैं पहली रचना हूं तो क्या, मैं पहली रचना हूं, फर्स्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, तो क्या, तो मुझे क्या करना है, ये तीन प्रश्न। अगले तीन थे, सब में विशेषता है, माता बुजुर्ग और बच्चा, माता बुजुर्ग और बच्चा, हर एक की अपनी अपनी विशेषता है। बच्चों की क्या विशेषता है, माताओं की क्या विशेषता है और बुजुर्गों की क्या विशेषता है, यह है प्रश्न। बुजुर्गों की क्या विशेषता है और बच्चों की क्या विशेषता है, बच्चे, कोई भी बच्चे, चिल्ड्रेन ऑफ द वर्ल्ड, चिल्ड्रेन की क्या विशेषता है, अब नहीं विशेषता बताओ, इनोसेंट है, एकदम इनोसेंट है, उन्हें बहुत सरल स्वभाव है। यह नन्ना सा शिशु ये नहीं जानता इसे कितनी लंबी यात्रा पार करनी है, ये नन्ना सा शिशु इसे ये भी नहीं पता, हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है, इसे उस ग्वाले से भी क्या लेना देना जिसने आज ही दूध कम तोला था। यह नन्ना सा शिशु ये नहीं जानता इसे इसके जीवन की यात्रा कैसी होगी, यह नन्ना सा शिशु ये नहीं जानता इसके जीवन की यात्रा समतल होगी या उभड़ धाबड़ होगी, यह नन्ना सा शिशु परंतु इसके चेहरे पर वैसी ही निर्विकारिता जो कभी बुद्ध ने अपने जीवन भर की साधना के बाद पाई थी, यह नन्ना सा शिशु इनोसेंस निरागस है, बाबा महात्मा कहते हैं, ये बच्चे की विशेषता है। तो बच्चों में क्या क्या विशेषता है वो लिखना है। दूसरा प्रश्न है, माताओं में क्या क्या विशेषता है, माताएं कहाँ हैं, हाँ बोलो, बहुत ही ज्यादा भोली होती है, हाँ बाबा बाबा कहते रहते, मुरली में कहा है मम्मा ने बाबा, बाप ने ब्रह्मा को निमित्त बनाया, ब्रह्मा ने मम्मा को निमित्त बनाया और मम्मा ने माताओं को आगे रखा पालना के विषय में। तो माताओं में एक संस्कार होता है पालना, सबकी पालना करती है, सहनशील होती है, पालना करती है, स्नेह होता है, ममत्व होता है, ये सब। त्यागी होता है, सबको खिलाएंगे बाद में सबसे आखिरी में खाएगी, युक्ति होती है। तो माताओं की विशेषता, तीसरा बुजुर्गों की विशेषता, अनुभवी, अनुभवी होते हैं बुजुर्ग, सब कुछ देखा है जीवन का, सारे अनुभव है, सुख दुख जय पराजय हानि लाभ निंदा ग्लानी सब हो गया है। मार्क ट्वेन ने लिखा है अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि जब मैं 20 साल का था सोचता था मेरे पिताजी कितने बुद्धू है, कुछ भी समझ में नहीं आता इनको, कब समझेंगे पता नहीं। फिर वो जब 40 साल का हो जाता है तो वो कहता है ये 20 सालों में मेरे पिताजी बहुत होशियार हो गए, पता नहीं इतना कहां से इन्होंने विजडम सीख लिया, 20 सालों में इतने होशियार कैसे हो गए। होशियार वो नहीं तुम हुए हो। तो बुजुर्गों की विशेषता, ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, तीन गीत, तीन गीत में सबसे पहला गीत था सेठ स्वामी को नहीं जाना अल्फ को, ने नहीं जाना अल्फ ने, अल्फ को हम बच्चों ने जान लिया, बच्चों ने अल्फ को जान लिया। तो उसमें बाबा ने उदाहरण कौन सा दिया है पहले तो, अच्छा वो वाला लेते हैं। तो बच्चा क्या कहता है फलक से, मैं आत्मा हूं। बच्चे ने जान लिया, साइंस वाले नहीं जान पाए, जो इधर गए चांद पर चले गए उनको नहीं, वो नहीं जान पाए। नील आर्मस्ट्रांग और दूसरा साथी कौन था उसका, नहीं यूरी गैगरिन तो बहुत पहले चला गया था, वो तो रशिया से, ये जब चांद पे जब पहुंचे थे तो सारे विश्व, हाँ ऐसा ही कुछ था, आइस से था शायद। तो वो जब पहली बार चांद पर गए इतनी उत्सुकता थी सारे विश्व में, इतनी उत्सुकता थी कि चांद पे होगा क्या, चांद पे होगा क्या, चांद पे होगा क्या, और 10 मिनट के बाद में ये जो उत्सुकता खत्म हो गई क्योंकि वहां कुछ भी नहीं दिखा, खड्डे ही थे एकदम, जो था ना क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो चांद तक तो पहुंच गया बाबा ने कहा, साइंसदान प्रकृति जीत बन गया, पर ये नहीं जाना अभी तक तुम हो कौन, मैं आत्मा हूं, ये नहीं जाना बच्चे ने जान लिया। तो अगला प्रश्न ये भी है, यहां पर बच्चे ने क्या क्या जाना है। ज्ञान में चलने वाले बच्चों ने क्या क्या जाना है, ये एक प्रश्न हो सकता है। दूसरा, माताओं ने क्या क्या जाना है, ये एक दूसरा प्रश्न है। माताओं ने, बाबा ने कहा वो उन्होंने परमात्मा को नहीं जाना, यहां माताएं कहती हमने भगवान को जान लिया, यहां ऋषि मुनि कहते हैं नेति नेति, भगवान को जानना बहुत मुश्किल है। अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, अभी जिज्ञासा चालू करो, अथ तो भक्ति जिज्ञासा, भक्ति क्या है, ब्रह्म क्या है, ज्ञान क्या है, सत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, जगत क्या है, सार क्या है, असार क्या है, ये सब पढ़ो, उसके बाद में समझ में आता है कि कुछ भी समझ में नहीं आया। सारे शास्त्र पढ़ो, शंकराचार्य ने लिखा है, अब तुमने सारे शास्त्र पढ़ लिए ना, भक्ति वेदा ब्रह्म सूत्र की शुरुआत वहां से, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, तुमने सेवा की, तुमने पुण्य किया, दान किए, सब किया, माँ बाप की सेवा की, पितरों की सेवा की, सब किया, अब आ जाओ बच्चों बैठो, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब सोचो ब्रह्म क्या है, समझने के अभी चालू होगी तुम्हारी यात्रा। तो वहां किसी ने नहीं जाना, तो यहां माताओं ने क्या जाना। तीसरा, प्रवृत्ति वाले क्या कहते हैं, कौन सी ऐसी, ये सबसे अच्छा प्रश्न है, कौन सी ऐसी बातें हैं जिसे संसार असंभव समझता है और जिसको हमने संभव कर दिया है। एक उदाहरण दिया है पवित्रता, ब्रह्मचर्य, पति और पत्नी ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करे, ये संसार में कहीं नहीं है, साथ में रहते हुए बीच में भगवान है, क्या ऐसी ब्रह्मचर्य की धारणा कहीं संसार में आज तक किसी ने सिखाई। सबने ये सिखाया कि पवित्र रहो, एस्कॉन में जाओ वहां पर भी पवित्र रहते, भक्ति वेदांत ने वो भी सिखाया, उधर वहां पर भी पवित्र रहते, परंतु फिर भी गृहस्थ में बच्चे रहते हैं उनको। एक पत्नी व्रता, ऐसी पवित्रता है, यहां वो है ही नहीं नियम, रिगार्डलेस ऑफ तुम कौन हो, क्या तुम्हारा संबंध है, सभी भाई बहन है क्योंकि एक परमात्मा की संतान है। तो संपूर्ण ब्रह्मचर्य, संपूर्ण पवित्रता, इस बात को संसार वालों ने असंभव समझा है। वो तो गृहस्थियों के, सन्यासियों के लिए भी मुश्किल है, तो गृहस्थी कहां से पवित्र रहेंगे। सन्यासी जंगल में चले गए, वहां पर भी स्वप्न में जो दिखाए अप्सराएं आती थी वो क्या थी, दिखाया है ना शास्त्रों में, तपस्या कर रहे हैं, अप्सरा आती है, मेनका आती है, कभी रंभा आती है, कभी कोई आता है, कभी उर्वशी, कोई कोई आते रहता है और उनकी तपस्या भंग करती है। ये सब है क्या? क्योंकि ये कोई अप्सरा नहीं आ रही है, उनके मन में ही है, अवचेतन मन में ये विक्षेपण है, प्रोजेक्शन है। क्यों अप्सराओं को क्या पड़ी है बिचारी, क्यों आएगी? बेचारा कोई खाना नहीं खा रहा है, प्यासा है, उसको पसंद क्यों करेगी पहली बात तो? अच्छे अच्छे राजे महाराजे बैठे हैं, वो क्यों बेचारे जंगल में जाएगी? बेचारा कुछ नहीं खाता है ना पीता है विठल भाई, और उसके पास जाके क्यों क्यों वो डांस करेगी और उसको बेचारे की तपस्या भंग करेगी? उसको टाइम क्या है ये सब करने में? उसको तो बेचारी ये जो दिखाया है, व्हाट इज, उसका भी एक राज है कि ऋषि तपस्या कर रहा है और अप्सराएं नाच रही है, कमाल है। कोई अप्सरा कहां से नहीं आ रही है, सब प्रोजेक्शन है, प्रक्षेपण है मात्र। अंदर जो दमित वासनाएं और भावनाएं हैं, जो संसार छोड़कर भागे, वही चल रहा है अब तक। जो कल भी सुनाया, 30 साल हो गए संन्यास देने के लिए, 30 साल के बाद खबर आई पत्नी ने शरीर छोड़ दिया, तो वो कहता है झंझट छूटी। मतलब अभी तक झंझट थी, अभी तक मन ही मन में चिंतन था कहीं ना कहीं, संन्यास तो ले लिया पर पत्नी से छूटे नहीं। वो तो वैसे ही होना चाहिए। महात्मा बुद्ध का दिखाया हुआ है, जब यशोधरा खुद भिक्षुनी बन गई, वो इतने बड़े बुद्ध के संग में कहां खो गई पता ही नहीं, उसका कोई वर्णन ही नहीं है। देखो ना, तो बुद्ध ने कभी उसका नाम लिया है, किसी भी धम्मपद में कहीं पर भी उसका नाम नहीं है, यशोधरा आई या उसने कुछ किया। कितना उसकी भी समर्पण भाव है कि उसने अपने आप को इतना साधारण बना दिया, नहीं तो मेरा पति इस पूरे इतना बड़ा हजारों लाखों सन्यासी है, उसका हेड है, तो मैं भी कुछ कम नहीं हूं, ऐसा नहीं सोचा। वो खो गई उसमें कहीं, उसका कहीं वर्णन नहीं है। बेटे का तो वर्णन है परंतु उसका कहीं वर्णन नहीं है। दोनों की तरफ से तपस्या ऐसी है, खो गए दोनों। तो कहते हम प्रवृत्ति असंभव कौन कौन सी चीजें हैं जो संसार समझता है और जो यहां संभव हो गई है। एक तो पवित्रता है, इसके अलावा और 9 बातें, टोटल 10 पॉइंट लिखनी है। ये अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न। दूसरा गीत था, पाना था सो पा लिया, तो तुम्हें फकुर रहना चाहिए, तुम्हें नशा रहना चाहिए, अप्राप्त कोई भी वस्तु नहीं है, तुम्हारा जो भी बोझ है वो बाप को दे दो और बेफिक्र बन जाओ। तो प्रश्न है, बेफिक्र बादशाह कैसे बने? सारी फिक्र से फारिग होने के लिए क्या हो जाए, सारी चिंताओं से मुक्त होने के लिए क्या करे, चिंता मणि कैसे बन जाए? बाबा चिंतामणि का दूसरा अर्थ बताते हैं, परंतु वास्तव में चिंतामणि का अर्थ होता है वह मणि जो चिंताओं से सबको मुक्त करे। सला कल्प तरुंचे आरव, चेतना चिंता मणिन से गाव। महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर पसायदान में लिखते हैं, ऐसा संत बन जाओ, ऐसे महात्मा बन जाओ कि जो चलता फिरता चिंता, चेतना चिंता मणिन से गाव। एक चिंतामणि यदि मिल गया तो चिंताएं मिट जाती, पर तुम ऐसे बन जाओ कि चिंतामणि का गाव है, जैसे इतनी चिंतामणियां साथ चल रही है। चला कल्प तरुण चे आरव, चेतना चिंता मणिन से गाव, बोलती जे अर्णव पीयूषा चे, जो जो बोलोगे वो अमृत होगा। कौन सी? चिंतपूर्णी देवी, तो वो बन जाओ, ठीक है। ये एक दूसरा प्रश्न, फकुर कैसे, फकुर में कैसे रहे, फिक्र उसको कैसे देते। अगला प्रश्न है, तीसरा गीत, क्या करे कैसे करे, इसके लिए उत्तर क्या बताया बाबा ने? साक्षी। तो निरंतर साक्षी भाव, डिटैच्ड ऑब्जर्वरशिप रहे, इसके लिए किन धारणाओं की आवश्यकता है? कौन सी सूक्ष्म धारणाएं हो जिससे साक्षी हो? अगर तुम साक्षी हो तो फिर 3 चीजें हो जाओगी, खेल, मजा, अपसेट नहीं। अपसेट होना अर्थात नाराज, मूड ऑफ, क्लास से गायब, कितने दिन, तो साक्षी, साक्षी की मजा आना चाहिए संसार में, जो हो रहा है वो देखते हुए दुखी नहीं होना है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, यहाँ ये क्यों, वहां वो क्यों, नहीं तो कोई मजा चखा देगा। हाँ बरोबर बोला। तो लीला है संसार, ऐसी हमारी अवस्था हो। कृष्ण को कभी महाभारत में दुखी होते हुए देखा क्या? राम तो कभी कभी हो रहा है, फिर भी राम कृष्ण की अवस्था देखो। कृष्ण की अवस्था शुरुआत से लेकर कंस इतने सारे जो भी भेज रहा है, कृष्ण कभी डिस्टर्ब होते हुए देखा? ये कंस को क्या है जब पूतना को भेजता है और तारा को इसको भेजता है उसको भेजता है, मुझे चैन से तो सोने दे। ये इंद्र देखो मुझे परेशान करता है, अब कब तक खड़े रखो हाथ गोवर्धन को, उसको कोई चिंता ही नहीं है। ये कंस का मैं क्या करूं, ये ब्रह्मा का क्या करूं, या इंद्र का क्या करूं, कोई डिस्टरबेंस उसको कभी नहीं। वो उसको लेने आता है तो ये भी नहीं बोलता है देखा मुझे फंसा के लेके जा रहे हैं। अच्छा गोपियों से बिछड़ कर जा रहा है, दुखी होते देखा कि अभी मैं कभी नहीं आऊंगा, उसको पता है वो कभी नहीं आने वाला है वापस, फिर भी कभी दुखी देखा नहीं। वो उधर शकुनी अलग अलग चाले चलता है, तो वो कभी दुखी होते हुए देखा ये शकुनी ऐसा क्यों करता है, ये दुर्योधन ऐसा क्यों है, कभी उसको दुखी होते हुए देखा? कभी भी दुखी नहीं है। कैसी अवस्था है वो? लीला पुरुषोत्तम है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो कृष्ण लीला पुरुषोत्तम बताया है। और उधर राम, हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी श्रीता मृगनयनी, चिल्ला रहा है पूछ रहा है हे पक्षी हे वन हे जलचर बताओ तुमने कहीं मेरी सीता को देखा, रो रहा है दुखी है बेचारा। तो क्या बनना है? लीला पुरुषोत्तम, अभी बन जाओ साक्षी। ये साक्षी से होगा मजा, इसको कहते हैं मजा। उसके लिए तो एंटरटेनमेंट है, सारा महाभारत का युद्ध हो गया, सब मर गए, फिर भी दुखी सब है। पांडव भी दुखी है, कुंती दुखी है, सब दुखी है, इधर उधर सारे दुखी है, उसको कोई दुखी नहीं है। कर्ण चला गया, उनका भाई, उनको पता था ये हमारा भाई है, मरने के बाद पता चला कि ये बड़ा भाई था, बेचारे दुखी है पांडव। अर्जुन सबसे ज्यादा दुखी है, परंतु कृष्ण दुखी नहीं है, तब भी वो आनंदित है, तब भी उसकी अवस्था कैसी है? ये है योगी की अवस्था। ठीक है, अगला प्रश्न। तीन चीजें कौन सी? चंचल मन को स्थिर कैसे करे, दूसरा प्रश्न भटकती बुद्धि को स्थिर कैसे करे, और पुराने संस्कार को कैसे मिटाए समाप्त करे। ये तीन प्रश्न। अगले दो प्रश्न साइलेंस की पावर और परिवर्तन शक्ति, इनका प्रयोग कैसे करें? साइलेंस पावर का, परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन पावर का प्रयोग कैसे करें? और इससे तीन बातें हो जाएगी, कौन कौन सी? असंभव, यहां पर भी ये बात बताई है, असंभव संभव, सहज मुश्किल, मुश्किल सहज, नेगेटिव पॉजिटिव। वो नेगेटिव पॉजिटिव एक्चुअली अलग जगह कहा है, पर समस्या समाधान कारण निवारण। तो ये दो पावर से क्या क्या होगा, ये प्रश्न है। ये नेक्स्ट प्रश्न, लास्ट प्रश्न ड्रिल का। ड्रिल बताई है, तो ड्रिल में अगर बार, ये प्रश्न ऐसा है कि सारे दिन भर बार बार ड्रिल कैसे करें, किस विधि से की जाए? बाबा कहते हैं एक मिनट में करो, एक सेकंड में करो, कैसे उसका थोड़ा निराकार साकार अशरीरी बन जाओ, ब्राह्मण हूं फरिश्ता हूं, ये ड्रिल करो। तो ये थी कल की अव्यक्त वाणी, और कुछ एक दो बातें थी वो खाली पढ़ लेंगे। ओम शांति 10-11-17। प्यारे बाप दादा के अवतरण दिवस का यह दूसरा टर्न है। प्यारे बाप दादा का रथ गुलजार दादी जी कल अर्थात 9-11-17 को मुंबई से शांतिवन पहुंची। आज 10 तारीख को सायंकाल 6:30 से प्यारे बाप दादा के महावाक्य वीडियो द्वारा सुनाए गए। ये महावाक्य थे 2007 के 31 अक्टूबर 2007, फर्स्ट अव्यक्त वाणी बाबा के दादी के अव्यक्त होने के बाद के। यह महावाक्य आपके पास भेज रहे हैं, यह टर्न कर्नाटक जोन और इंदौर जोन की सेवा का है। अव्यक्त महावाक्य सुनने के पश्चात दादी गुलजार जी ने प्यारे बाप दादा को भोग लगाया, फिर सबसे नैन मुलाकात करते हुए हाथ हिलाते मिलन मनाया और सबके प्रति मधुर वाक्य महावाक्य उच्चारण किया, वह आपके पास भेज रहे। महावाक्य, आज का दिन कितना प्यारा है जो मीठे बाबा की स्मृति दिला रहा है। भिन्न भिन्न समय के दिन, मिलन के दिन, महावाक्य सुनने के दिन, यह सब आपको स्मृति दिलाने के लिए है, क्योंकि इतने समय के बाद तो भूल ही जाता है न? लेकिन बुद्धि में स्मृति में तो है, हमको यह वरदान मिले हुए है। तो यह जो वरदान है यह समय पर बहुत काम में आते हैं। कोई समय ऐसा आता है जब अपने को अकेला समझते हैं, कोई साथी साकार में नजर नहीं आता है, लेकिन यह जो हमारा समय बीता है संगठन की शक्ति से। संगठन हमको बहुत प्यार से स्नेह से लेके चल रहा है, अकेले भी चलते हैं, लेकिन संगठन की मदद अभी जरूरी है। जब संगठन की बात आती है तो सबके चेहरे बदल जाते हैं। वैसे तो हमारे अंदर सबकी याद है और सबके अंदर हमारी याद है। हम अकेले नहीं चलते, संगठन में चलते हैं। संगठन हमको अपना बना के मिला के चला रहा है और संगठन की जो शक्ति है वह भी दिखाती है कि संगठन कितना प्यारा होता है, चलते फिरते कितना संगठन का फायदा होता है। तो संगठन का लाभ लेते हुए हम संगठित रूप से में भिन्न भिन्न तरीके से संगठन को यूज कर रहे हैं। कहां भी कुछ होता है तो चाहे अकेले चाहे संगठन में, किसी भी रीति से जब साथ में संगठन में होते हैं तो कितना प्यारा समय बीतता है और कितना आपस का लव स्मृति में आता है। इसलिए बहुत अच्छा है जो आज के दिन हम आपस में तो मिलते हैं, लेकिन आपस में मिलने का आधार हमारा बाबा है। बाबा भी बच्चों से दिल से मिलते हैं, फिर बाहर स्थूल में तो हमारा स्थूल शरीर भी है तो वह भी मिलता है। तो ऐसा लगता है जैसे हम एक परिवार है। तो आपस में मिलने का, बाहर और साथियों से मिलने का, और मूल बात है अपने बड़ों से मिलना, यह भी बहुत अच्छा मिलन मेले का रूप हो जाता है। अच्छा, सबको बाबा और हमारी मीठी मम्मा की याद है। यहाँ तो हमारे मुख्य आधार है साथी है, यही तो वह साथ बहुत अच्छा है। हम सबके दिल में प्यार है तो बाहर भी मिलन मेले का रूप दिखाई देता है। अच्छा, ओम शांति। इस मुरली से एक होमवर्क डॉक्टर हीना के लिए, संगठन के 16 राज, संगठन के 16 राज या 16 सूत्र ले लो। संगठन के 16 सूत्र क्या क्या है? संगठन के 16 सूत्र ये आपको कब बताना है वो बताएंगे, कल परसों। तब तक ये तैयार करके रखो टॉपिक। ओम शांति।